देख रहे हैं कि शरीर की हानि होती है, जिस काम के वहां रुपयों की हानि होती है, उस काम की जितनी परवाह करते हैं इतनी इसकी परवाह नहीं करते। तीसरी बात यह है कि ये जो कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि शरीर से जो काम करते हैं, इंद्रियों से जो काम करते हैं, उसका कोई इतना मूल्य नहीं है, जो मन से काम करते हैं उसका ही मूल्य है। आप स्नान करते हो और आपका मन दूसरे काम में घूमता रहता है, आप भोजन करते हो आपका मन कहीं का कहीं चला जाता है, आप नित्यकर्म के वास्ते बैठते हो, पूजा के वास्ते, भजन ध्यान के वास्ते बैठते हो, उस समय में भी जो खास कि आपका भजन ध्यान का ही समय है वहाँ, उस समय में आपका मन दूसरे में चला जाता है। तो ये कितनी अंधेर खाते की बात, काम तो आप तो कर ही रहे हो कि आपका जो स्नान है, सोच है और संध्या है, गायत्री है, जप है, ध्यान है, पूजा पाठ और भोजन, उठना बैठना, खाना पीना, चलना, और उस समय में मन आपका दूसरे ही काम में रहता है। तो हमारे तो यही सबसे विनय है कि दूसरे काम में जो रह रहे उस स्थान में भगवान का मन रहे, इस पर जोर लगाना चाहिए। शरीर की क्रिया, इंद्रिया की क्रिया जिस प्रकार से आप करते हो, कोई फेरबदल करने की हम नहीं करते, जैसा आप करते हो वैसे करते हो। किसी भाई ने कलकत्ता में हमसे पूछा था, गोविंद, उन्होंने कि ये जो गवर्नमेंट की जो कानून है, माने इनकम के विषय की, सेल टिकट के विषय की, ब्लैक मार्केट की, या और जो कुछ कानून है, तो उसके अनुसार तो चलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे भी कोई उपाय है कि हम लोग जिस प्रकार से ये काम जो कर रहे हैं, हमारे से जो कुछ दोष बनती आ रहा है, ये कायम रहता हुआ भी भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसको कोई उपाय है? क्या उपाय है? क्या उपाय है? अभी चेतु दुराचारो भजते माम नन्न भाग साधु समन्तव्य समग्र भविष्य तो शिवपुरम भगवती धर्मात्मा शांति निगत कौन थे प्रति जानी नये भविष्य बन सकते। भगवान कहते हैं कि अतिशय दुराचारी आदमी भी अन्न भाग से मुझ को भजने वाला है तो शीघ्र साधु हो जाता है, क्षिपण भगवती धर्मात्मा जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, इसलिए उसको साधु समझना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे प्रकार से इस बात को समझता है कि भगवान के भजने के समान दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। तो इसके प्रभाव से वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, सस्व शांति मानो सदा रहने वाली पूर्ण शांति को प्राप्त होता है। भगवान का कहना है कि हे कौन थे, मैं प्रतिज्ञा के लिए कहता हूँ कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, पतन नहीं होता। और भी अनन चेता सत्यंग योग समृति नित्य सत्य से अनुसूल व्यापार का नित्य योग अनंत से जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। तो एक बात आप रखें कि हर वक्त भगवान को याद करें, और आपके जरिए से जो कुछ व्यवहार को काम हो रहे है, शरीर से जो कुछ काम हो रहे है, और व्यवहार के विषय में जो कुछ काम हो रहे है, वो एक प्रकार से हो ही रहे है, किंतु आप एक काम जो करेंगे उससे भगवान को याद। तो इस प्रकार की चेष्टा से फिर सब काम कैसे हो सके है? वो निरंतर भगवान की जो स्मृति है, बल्कि असामर्थ है कि सारा अंतकरण शुद्ध करके और इस युद्ध में गिलानी पैदा कर सके है कि जिसकी गिलानी से फिर जितना पाप करता हूं मैं जीता नहीं कर बंद करना ही तो थे बोला बंद करने की बोला चेष्टा मैं करके की अरे मूल जो जड़ है एक प्रकार से उसको आप पकड़ो वो तो डरा पता सींचना है फिर यह जड़ सींचना है तो जड़ के सींचने से भी वो गाछ अपना आप प्यारा हो जाता है तो इसके लिए खूब जोर लगाना चाहिए कि निरंतर भगवान को भजन हुए और निष्काम भाव से हुए परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य हुए और वो श्रद्धा पूर्वक हुए इस पर जोर लगाई जाती तो भजन करो निरंतर और वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक हुए निष्काम भाव से हुए निरंतर हुए इसके ऊपर जोर लगा रहे और कोई बातों के ऊपर जोर नहीं रहे कि श्रद्धा भक्ति कहां पर जाना कोई बात भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान को भजन करें ये निष्काम है उद्देश्य यो रखें तो उद्देश्य अपनो जो है यो रहे और निरंतरता उसके मानी थी बस तो निरंतरता की यह सामर्थ्य है कि वो सब अपने आप ही सब काम बना दे तो ठीक है तो यह बात है पर आपने खूब जोर लगाओ इस श्लोक के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि यंग वापी श्रवण भावम त्रस्तम थे कले वरम तंत्र निर्मिति बोलते हैं सदा तद भाव भाव इस श्लोक के भाव ने यदि मनुष्य समझ करके और इस पर श्रद्धा कर ले रहे तो एक श्लोक काफी है आत्मा कल्याण भगवान ये कह रहा है कि जिस जिस भाव को भावता है वह मनुष्य शरीर को त्याग करके जाता है उसी उसी को प्राप्त हो जाता है सदा जिसका अभ्यास करता है वही अंत में याद आता है सदा तद भाव आता सदा जिस भाव को भावता हुआ मरने के समय में तद भाव से भावित हुआ जिस जिस भाव को भावता उसी उसी को प्राप्त तो सदा तद भाव से भावित हुआ तो सदा जो शब्द है इस पर थोड़ा ध्यान दे सदा का क्या मतलब सदा तदभाव भावित है ये चरणों के ऊपर ध्यान दे रहे कि सदा तदभाव से भावित हुआ मरने के समय में जिस चीज भाव को भावता उस चीज को प्राप्त हो जाता है तो मरने के समय के मां सदा का जो अभ्यास है वो एक रूप से दामी बस रहा है तस्मात का भाव यही है तस्मा सर्वे सुखाले सुमा मनुष्य समझ सकते इसलिए ये अर्जुन तू हर समय के बीच के मां मुझको याद कर युद्ध कर युद्ध में कोई आपने कम चेष्टा करनी पड़े क्या या युद्ध के मां कोई आपने सूर्यों की कितना ख्याल रखना पड़े अरे वो एक गिने मरने की बाजी है वहां तो कह रहे कि हर वक्त मुझको याद रखता हुआ तू वहां पर युद्ध कर अपने तो इस प्रकार से समझो कि इतनी कठिनाइयां है ही नहीं स्त्रियां हैं पुरुष है चलते उठते खाते पीते हर समय में भगवान को याद रखते हुए ही सब क्रिया करे तो क्या आपत्ति है ये सब क्रिया तो अनायास ही हो सका है तो आपके फिर स्वस्थ नाम जो है और भोजन एक है और ये इंद्रियां से होने वाला जितना काम है इसमें तो आपत्ति क्या है तो इसमें विश्वास होना चाहिए श्रद्धा होनी चाहिए जो इस प्रकार से तीन लाभ दिखलाया जा रहा है और युक्ति संगत लाभ है शास्त्र संगत युक्ति संगत फिर अपने स्वभाव को परिवर्तन नहीं हुआ है बढ़िया के बाद और आपके स्वभाव के परिवर्तन के बीच में नाना प्रकार का दोष है उन सब दोषों के निवारण करने की अपेक्षा एक एक ही चीज पर ज्यादा ध्यान दे कि महात्मा का जो वचन है, ईश्वर का जो वचन है, गीता का जो वचन है, ये बहुत धर्मी चीज है और इसके अनुसार अपन जीवन बनाना है। और चाहे कोई काम अपने से बड़े चाहने पर यदि कमी रहेगी तो इन पर जो विश्वास है, इनके विश्वास के बल पर जो निरंतर भगवान की समृद्धि है, भगवान की निरंतर समृद्धि की जितने त्यागत और किसी ने जितने त्यागत तो भगवान का जो नाम है, रूप है, उसमें याद रखना चाहिए। तुलसीदास जी तो नाम के ऊपर ज्यादा जोर दिए याद रखने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण जी जो है सो अपने स्वरूप के ऊपर ज्यादा जोर दिए हर वक्त याद रखे। तो नाम के ऊपर जोर नहीं देकर स्वरूप पर ज्यादा जोर दिए और अपने दोनों पर ज्यादा जोर। तुलसीदास जी जो महात्मा है उनकी बात में भी अमल में जानी चाहिए, और भगवान तो भगवान है, उनकी तो बात ही क्या है, उनकी बात तो भी ख्याल करना चाहिए। भाई जी को ज्यादा जो नाम के ऊपर है, हमारे एक प्रकार से ज्यादा जो नाम और रूप दोनों के ऊपर, भाई जी को ज्यादा जो तरफ के हुआ है, हमारे ज्यादा जो सगुण और निर्गुण दोनों की तरफ। और सत्संग समय में भी स्वाध्याय करो और सत्संग के अभाव में तो स्वाध्याय प्रधान है ही। तो इस प्रकार के करने से कि दोषों की निवृत्ति अपने आप ही हो सकती है। बड़े बड़े दोष अपने आप ही से नष्ट हो सकते हैं। और जो इन पर कोई भी भाई है, कोई भी साधु है या कृष्ण है या इनके ऊपर इनको जोर नहीं है, तो मैं तो ये समझता हूं कि आपने जप और ध्यान और सत्संग स्वाध्याय के तत्व ने समझा नहीं। भगवान को जी जो कथन है कि किसे दुराचारी पुरुष ने क्यों नहीं हो, वो भी शीघ्र धर्मात्मा बन सके भक्ति के प्रभाव से, तो इनको भी कुछ महत्व होना चाहिए। यह बात यदि होती नहीं, असंभव होती, तो भगवान को कहने की गरज ही क्या थी। किसको आपने भेलू रखा है या इस बात में समझा रहे है कि दुनिया में कितना भी पापी क्यों नहीं हो, मैं को भी शीघ्र से शीघ्र उद्धार हो सकता है, किंतु जो इतना पापी नहीं है उनको तो और जल्दी उद्धार होना चाहिए। इस पर जोर है कि यदि अतिशय दुराचारी पुरुष को शीघ्र उद्धार हो सके है, तो थोड़े पापी को शीघ्र उद्धार हो सके, इसमें तो कहना क्या है। जब भगवान की शरण लेने से स्त्री बड़ी शूद्र और चंडाल आदि जो पाप लेने वाली अछूत जाति और मलित जाति है उनको उद्धार हो सका है, तो फिर एक प्रकार से ब्राह्मण और क्षत्रिय जो और धर्मात्मा जो है तो उनको उद्धार हो जाए, इसमें फिर क्या अनुकरण क्या है। इस पर जोर टोंग समझिए भगवान, तो इसी भगवान के टोंग को देख करके हमारे दिल के मां ये एक बात चलती है कि इस पर ज्यादा जोर लगाना चाहिए। जो भगवान कहते हैं कि एक प्रकार से मेरे भक्तों के बीच के मन जो है सो गीता का कथन करना इतना दामी है, उसका कथन करना, प्रचार करना, कहना जिस किस प्रकार से कि मेरे भावों का संसार में प्रचार करना बहुत दामी है, इसका प्रचारक जो है इसे मेरे भावों का कथन करने वाला अर्थ से भाव से किसी भी प्रकार से मेरे भावों का प्रचार करने वाला जो पुरुष है उसके समान कोई भी मेरा प्यारा काम करने वाला नहीं है। तो फिर हम लोगों को इस पर ही खूब जोर चूड़ी लगानी चाहिए। जब मरने के समय के बीच के वहां इतनी छूट दी गई है तो एक प्रकार से उस छूट से तो अपना तो वंचित रहना ही नहीं चाहिए, और दूसरे ने जो छूट मिली है उसके भी जाकर शामिल हो जाना चाहिए और अपने संयोग की लाभ उठाना चाहिए। जो आदमी मर रहा है उसको भी जाकर के गीता रामायण भागवत सुनावे, भगवान के नाम का कीर्तन सुनावे, तो उसका कल्याण हो ही जाएगा। जब उसके कल्याण में हम निमित्त बन जाएंगे तो हमारे को भी तो कुछ मिलेगा। तो ये सैकाम भावी से जाना, किंतु हमारे को रुपया पैसा तो मिलेगा नहीं, हमारे को क्यों हम चाहते हैं, किस उद्देश्य से हम ये काम करते हैं, हमारा उद्देश्य तो भगवान की प्राप्ति के लिए ही है। तो हम ये कर रहे हैं भगवान की भी सामर्थ्य है कि हमारे उद्देश्य को विपरीत चीज हमारे को दे दी गई, तो फिर अपने हिंदू की इस काम के लिए क्यों नहीं तत्पर होकर उनको लगना चाहिए और क्यों नहीं इससे लोग की तरफ ख्याल करना चाहिए कि जो भगवान का वचन है कि जिस इस भाव को भावता और मरता उसी को प्राप्त होता है, पशु पक्षी मनुष्य किसी भी योनि को प्राणी को याद करता हुआ मरता है तो उसी को ही वो प्राप्त हो जाता है। तो हम हर वक्त क्यों नहीं भगवान को याद करें, उससे बढ़कर क्या वस्तु है कि हम उसको छोड़कर भगवान को छोड़कर के दूसरी वस्तु को याद करें। तो ये सार बात आप नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
अपने लिए मंगलमय है। इसी तरह क्षति भगवान बड़े दयालु है, प्रेमी है, हितेशी है, उनके समान अपने हितेशी दुनिया में कोई भी नहीं है। आप उस लाभ से वंचित क्यों हो रहे हैं हाँ? जो आप में मानता की कमी है तो कोई कमी नहीं, जो सब बात अपने आप ही ज्ञान एक जो है किसान छो और वो जाति को ग्वाल छो, उसने राजा की बड़ी भारी प्रशंसा सुनी कि हमारे देश को जो राजा है वो ज्ञानी है, महात्मा है और जीवन मुक्त है। यह सुनकर के राजा के दर्शन की लालसा से उस नगर में आए, जिस नगर को वो राजा था, नगर के वहां करके उसके गांव को ही एक बन के जाति को उनको मित्र हो वह के पास है। आगे बोले भाई तू के काम कर रहे थे, बोले मैं तेरा नौकरी करूं, चलो के महीने में कि 10 रुपया होंगे। कैसे करे कि वो क्लर्क है, कहो क्लर्क है कि अच्छा का जो मंत्री या दीवान वह कोई है, दीवान के राजा का दीवान। हाँ बोले अब मैं चरणा में पढ़ने लगे लड़के के, बोले तुम्हारा अवो भाग्य तुम्हारा भाग खुल गया। बोले इसी क्या बात है, अरे इसी क्या बात है, यहाँ का जो राजा है ये ज्ञानी है, महात्मा है और योगी है, महापुरुष है। यह बात तो बोले मैं सुनी, तो बोले क्या सुनी,